श्लोक माधवेंद्र पुरी का तिरुभाव महामहोत्सव मनाया जाता है, इसलिए हमें श्री चैतन्य चैतामृत के मध्य लीला के दूसरे स्कंद पहले भाग, यहाँ पहला भाग होता है, अंग्रेजी में दूसरा भाग होता है, लेकिन अध्याय है चौथा। इसमें माधवेंद्र पुरी की भक्ति की विशेषता के बारे में समझना होता है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने श्री माधवेंद्र पुरी का बहुत कृष्ण दृष्टांत कृष्ण भगवान की प्रेम भक्ति में बताया है। प्रेम लक्षण भक्ति गौड़ी वैष्णव संप्रदाय में माधवेंद्र पुरी से शुरू होती है, और ये प्रेम न तो शांत भाव से दिखाई देता है, बल्कि हमें सभी प्रकार से भक्ति रसामृत सिंधु में जैसे निरूपण किया गया है रूप गोस्वामी ने, तो भक्ति के सारे रसों का संकलन माधवेंद्रपुरी के भक्ति विशेष में दिखाई देता है। तो अवश्य हम इस पर ध्यान देखें। तो माधवेंद्रपुरी के लिए संक्षिप्त में उस अध्याय में हम ये पढ़ लेते हैं, बाद में ये 17वां श्लोक हमने पसंद किया है उस पर चर्चा करेंगे। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने अपने अमृत प्रभाव भाष्य में चौथे अध्याय का सारांश किस प्रकार दिया है, यानी कि यही अध्याय का चैतन्य चरितामृत अमृत प्रभाव भाष्य करके माधवेंद्रपुरी के जीवन प्रति जो भक्ति विनोद ठाकुर ने लिखा है उसका सारांश यहाँ दिया गया है। छत्रभोग के मार्ग से गुजरते हुए श्री चैतन्य महाप्रभु वृद्ध मंत्रेश्वर पहुंचे, जो उड़ीसा की सीमा पर है। रास्ते पर भर कीर्तन करते हुए और विभिन्न गांवों में भिक्षा मांगते हुए उन्होंने दिव्य आनंद का अनुभव किया। इस प्रकार वे रेमुणा नामक सुप्रसिद्ध गांव पहुंचे, जहां गोपीनाथ का अर्चा विग्रह है। वहां पर उन्होंने अपने गुरु ईश्वरपुरी के मुख से सुनी हुई माधवेंद्रपुरी की कथा सुनाई। यह कथा इस प्रकार है। गोवर्धन में रहते हुए एक रात को माधवेंद्रपुरी ने सपना दिखा कि गोपाल का अर्चा विग्रह जंगल में है, अतः अगले दिन उस अर्चा विग्रह को जंगल से खोद निकालने के लिए उन्होंने अपने पड़ोस के साथियों को उनके साथ चलने के लिए निमंत्रित किया। फिर उन्होंने श्री गोपाल जी के अर्चा विग्रह को बड़ी धूमधाम से गोवर्धन पर्वत की चोटी पर स्थापित किया। गोपाल की पूजा की गई और अन्नकूट उत्सव मनाया गया। इस उत्सव का सर्वत्र पता लग गया और निकटवर्ती गांवों के अनेक लोग उनमें सम्मिलित होने आए। एक रात गोपाल विग्रह फिर माधवेंद्रपुरी के स्वप्न में आए और उनसे जगन्नाथपुरी जाकर कुछ चंदन का लेप लाने और अर्चा विग्रह को लेप करने के लिए कहा। यह आदेश पाकर माधवेंद्रपुरी तुरंत उड़ीसा के लिए चल पड़े। बंगाल होकर यात्रा करते हुए वे रेमुणा गांव में पहुंचे और वहां पर उन्हें गोपीनाथ जी के अर्चा विग्रह को भोग लगा हुआ एक पात्र क्षीर प्राप्त हुआ। यह क्षीर पात्र गोपीनाथ ने चुराया था और उन्होंने इसे माधवेंद्रपुरी को दिया था, तभी से गोपीनाथ विग्रह क्षीर चोरा गोपीनाथ कहलाते हैं। जगन्नाथपुरी पहुंचने पर माधवेंद्रपुरी को राजा से अनुमति प्राप्त हो गई कि वे अपने साथ एक मांड चंदन तथा 20 तोले कपूर ले जा सकते हैं। वे दो व्यक्तियों की सहायता से यह सामग्री रेमुणा लाए। उन्होंने फिर से स्वप्न में देखा कि गोवर्धन पर स्थित गोपाल जी की इच्छा है कि इस चंदन को कर्पूर के साथ मिलाकर लेप तैयार किया जाए और उसे गोपीनाथ जी के विग्रह पर लगाया जाए। यह समझकर कि इसे गोवर्धन स्थित गोपाल जी संतुष्ट होंगे, माधवेंद्रपुरी ने उस आदेश का पालन किया और फिर जगन्नाथपुरी लौट आए। श्री चैतन्य महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु तथा अन्य भक्तों को यह कथा सुनाई और माधवेंद्रपुरी की शुद्ध भक्ति की प्रशंसा की। जब वे माधवेंद्रपुरी द्वारा रचित कुछ श्लोक सुना रहे थे तो वे भावमग्न हो गए। किंतु जब उन्होंने देखा कि वहां अनेक लोग एकत्र हुए हैं तो उन्होंने अपने आप को संभाला और थोड़ा सा खीर प्रसाद ग्रहण किया। इस तरह रात वहां बिताकर अगले दिन वे फिर से जगन्नाथपुरी के लिए चल पड़े। तो इस संदर्भ में हमें श्री गोपाल जी का विग्रह गोवर्धन में स्थापित करते जो अन्नकूट का उत्सव मनाते हैं, इसके प्रसंग में यहां भगवान की जंगानी यस्य सकलेन्द्रिय वृत्तिमंति पश्यन्ति पांति कलयन्ति चिरंजगन्ति आनंद चिन्मय रसत् सदज्वलस्य गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि का रहस्य प्रकट होता है। आज का श्लोक है, यद्यपि गोपाल सब अन्न व्यंजन खाइल तार हस्त स्पर्शे पुनः ते मनि हैल यद्यपि गोपाल सब अन्न व्यंजन खाइल तार हस्त स्पर्शे पुनः ते मनि हैल यद्यपि गोपाल सब अन्य व्यंजन खाइल तार हस्त स्पर्शे पुनः ते मनि हैल। यद्यपि यद्यपि गोपाल गोपाल ने सब सब अन्य व्यंजन अन्न और व्यंजन खाइल आ लिए तार उनके हस्त हाथ के स्पर्शे स्पर्श से पुनः पुनः तेमनी पहले की भांति हो गया। अनुवाद और तात्पर्य श्रीमदेसी भक्तिविदान स्वामी श्री प्रभुपाद के द्वारा। यद्यपि श्री गोपाल ने भोग लगाई सारी सामग्री खा ली थी, फिर भी उनके दिव्य हाथ के स्पर्श से हर वस्तु पूर्ववत बनी रही। नास्तिक लोग यह नहीं समझ पाएंगे कि किस तरह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपने अर्चा विग्रह रूप में प्रकट होकर भक्तों के द्वारा अर्पित सारा भोजन खा सकते हैं। भगवत गीता के 9वें अध्याय के 26वें श्लोक में कृष्ण कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्तिम उपाहृतम अश्नामि प्रयतात्मनः। यदि कोई प्रेम पूर्वक तथा भक्ति पूर्वक मुझसे एक पत्ती एक फूल फल या जल भी अर्पित करता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूं, क्योंकि भगवान पूर्ण है, अतएव वे अपने भक्तों के द्वारा भोग लगाई हर वस्तु को खाते हैं, फिर भी उनके दिव्य हाथ के स्पर्श से सारा भोजन पूर्ववत बना रहता है। केवल गुण में अंतर आता है, भोग लगाने के पूर्व भोजन कुछ और होता है, और भोग लगाने के बाद उसमें दिव्य गुण आ जाते हैं। क्योंकि भगवान पूर्ण है इसलिए खाने के बाद भी वे वैसे के वैसे रहते हैं। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते, ये ईश उपनिषद में कहा है। तो कृष्ण को भोग लगाया जा गया, भोजन गुण में कृष्ण जैसा ही होता है। जिस प्रकार कृष्ण अव्यय अर्थात नष्ट न होने वाले हैं, उसी तरह उनके द्वारा खाया गया भोजन उनसे अभिन्न है, वो पूर्ववत बना रहता है। इसके अतिरिक्त कृष्ण अपनी किसी भी दिव्य इंद्रिय से भोजन कर सकते हैं, वे भोजन को देखकर या उसका स्पर्श करके भी खा सकते हैं। यह सोचना भी गलत है कि कृष्ण के लिए भोजन करना आवश्यक है। वे साधारण मनुष्य की तरह भूखे नहीं होते, वे तो वे अपने आप को इस रूप में प्रस्तुत करते हैं मानो भूखे हैं। अतएव वे किसी प्रकार का भोजन खा सकते हैं, चाहे मात्रा कितनी क्यों ना हो। कृष्ण द्वारा भोजन करने में जो दर्शन निहित है उसे दिव्य इंद्रियों द्वारा ही समझा जा सकता है। जब हमारी इंद्रियां भगवान की भक्ति निरंतर करते करते शुद्ध हो जाती है, तभी हम कृष्ण के कार्यकलाप नाम रूप गुण लीलाएं तथा पार्षद को समझ सकते हैं। अतः कृष्णस्य नामादि न भवित ग्राह्यम इंद्रिय सेवनम मुखे ही जिह्वादो स्वयं स्मृत्यमेत्यद्य। कृष्ण को कोई भी अपनी कुंद भौतिक इंद्रियों के द्वारा नहीं समझा सकता, किंतु वे भक्तों की दिव्य प्रेमा भक्ति से प्रसन्न होकर उनके समक्ष प्रकट होते हैं। ये भक्ति रसामृत सिंधु के प्रथम स्कंद दूसरे अध्याय 234वां श्लोक है। भक्तगण अनुभूति से कृष्ण का साक्षात्कार करते हैं। यह एक संसारी विद्वान के लिए भक्तिहीन रहकर कृष्ण तथा उनकी लीलाओं को शोध कार्य द्वारा समझ पाना संभव नहीं है। यह अनुभव कैल माधव गोसाई तार थाली गोपारिल लुकान कछु नाही। उसके बाद का श्लोक है कि माधवेन्द्रपुरी ने दिव्य अनुभव से जान लिया कि किस तरह गोपाल द्वारा सब कुछ खा लिया गया और फिर भी भोजन ज्यों का त्यों बना रहा, भगवान के भक्तों उसे कुछ छुपा नहीं रहता। ओम अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकं। वंदेहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि श्रीहरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यद्यपि गोपाल ने भोग लगाई सारी सामग्री खा ली थी, फिर भी उनके दिव्य हाथ के स्पर्श से हर वस्तु पूर्ववत बनी रही। भक्ति में बहुत अलंकारिक भाषाएं का उपयोग नहीं किया जाता, लेकिन भक्ति समझाने के लिए स्वानुभव या आत्मानुभूति आवश्यक है। आत्मानुभूति आत्मा की पवित्रता होने पर ही होती है, यानी कि जहां तक भौतिक संसर्ग है, जहां भौतिक तरंगे जैसे ये फोन में भी आती रही, परेशान डाल देती रही, माताजी गिर रही थी अभी, कि ये इतना भय पैदा कर देती है, तो ये राजसिक और तामसिक गुणों से भरा पड़ा है। सात्विक तो बात ही नहीं, जो परेशानी में रख देता है हृदय में कंपारी छूट जाती है, कितना दबकता होगा हृदय उसकी माता जी। कहने का मतलब है, जहां तक ये भौतिक गुणों का प्रभाव है, वो भगवान कैसे खा सकते हैं वो समझने नहीं देता। इसलिए जब तक इन तीनों गुणों से छुटकारा नहीं होता और विशुद्ध आत्मा भगवान की ऐसी भक्ति में निरंतर लगी रहती है, तो बहुत सारी बातें उसकी समझ में आने लगती हैं जो कोई एक सांसारिक जीव द्वारा नहीं समझा जाता। इसका मतलब ये नहीं है कि हर एक व्यक्ति भक्त है। भक्त भक्त की कैटेगरी होती है। यहां माधवेंद्रपुरी का दृष्टांत और लेने के पीछे माधवेंद्रपुरी एक विशुद्ध भक्त थे। विशुद्ध भक्त सकाम भक्त से भी ऊंचा होता है। कभी कभी सकाम भक्त भी विशुद्ध भक्त कहले जाते हैं, लेकिन जहां तक फिलसूफी द्वारा भगवान की ऐसी अनुभूति इनके द्वारा नहीं होती, इसके लिए जो सिद्धांत है वैष्णव सिद्धांत, वो परंपरागत प्राप्त होने चाहिए और उसके द्वारा समझना चाहिए। सर्वप्रथम तो ये देखें कि चैतन्य महाप्रभु ने मध्व संप्रदाय से सीधा संपर्क रखा है, फिर भी वो तत्वज्ञानी यानी कि तत्ववादी नहीं बने। जो तत्व में घूमता फिरता रहता है कि परम सत्य जो फिलसफी ही ज्यादा बनाए रखता है, तो उसके माध्यम से वह भगवत प्राप्ति में कई बाधाएं आती है, मुश्किली हो जाती है। तो भक्ति की उन्नति तत्ववादियों से भी ऊपर जब विशुद्ध भाव के द्वारा भगवान के कार्यकलापों को समझने में हमें मदद करती है, तो वो चैतन्य महाप्रभु ने माधवेंद्रपुरी संप्रदाय के साथ जुड़ाव करना पसंद किया, और वो भी अति विनम्रता से। माधवेंद्रपुरी विशुद्ध भक्त थे, उनसे दीक्षा नहीं ली। भक्ति की शक्ति प्रभुपाद जी जैसे बताते हैं कि नहीं, हमें गुरु परंपरा चालू रखने के लिए ही नहीं, बल्कि भक्ति की विशुद्धकरण के लिए अनुसंग यानी कि आचार्य या गुरुओं की मदद से हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। इसलिए गुरु परंपरा चालू रखने की आवश्यकता है, नहीं कि सिर्फ हट लेकर हम बैठ जाते हैं और प्रभुपाद जी ही सबके गुरु हैं करके बैठ। इसमें ये बालिशता है, मूर्खता है। माधवेंद्रपुरी इतने सक्षम थे चैतन्य महाप्रभु होते हुए भी उन्होंने सीधी दीक्षा माधवेंद्रपुरी से नहीं ली, ईश्वरपुरी से। वो ये समझते हैं कि यदि माधवेंद्रपुरी इतने सक्षम है तो इनकी शिक्षा और इनको वफादार रहने वाले इनके भक्त कितने सक्षम होंगे। क्योंकि एक तरफ देखो कलयुग प्रगति कर रहा है, पूर्ववर्ती आचार्य तो चले जाएंगे लेकिन विषमता की परिस्थिति उनके अनुयायियों को होती है। फिर भी इसमें यदि वो भक्ति की महत्ता के लिए इच्छुक हैं तो ऐसे भक्त चाहे कितना भी संघर्ष क्यों करें नहीं करें फिर भी भक्ति की सिद्धि हो सकती है, नहीं तो इसको कैसे प्रगति कर सकता है प्रभुपाद जी की चले जाना। तो हमेशा भक्ति की क्वालिटी जो है जो विशुद्धिकरण से जो प्राप्त होती है तो इसमें चैतन्य महाप्रभु के बताए हुए दृष्टांत द्वारा अचिंत्य भेदाभेद तत्व द्वारा ही समझी जाती है। क्योंकि हर एक खोपड़ी में अलग अलग मतांतर होता है, कोई कैसे समझे एक घटना। चलो अभी ताजेतर में ही तो पिछले हफ्ते की बात है, मायापुर में जगता का स्वामी कीर्तन कर रहे थे और लोगों ने देखा कि चैतन्य महाप्रभु की आंखों में से आंसू आ रहे हैं और इन्होंने फोटो ली व्हाट्सएप पर भेजा है, क्या हल्ला मचा दिया। यूं देखे तो एक प्रकार का अनुभव, मैं 3-4 साल पहले ऐसे ही पंजाबी बाग मंदिर में जगन्नाथ जी बोल रहे हैं हंस रहे हैं ऐसा वो टेलीफोन में किसी ने फोटो खींची थी जो। तो आस्तिक लोग किस दृष्टि से देखते हैं, नास्तिक लोग किस दृष्टि से देखते हैं। अचिंत्य भेदाभेद तत्व इसमें बीच में क्या काम करता है। कई भक्त लोग ने मायापुर में कहा अरे ये तो कंडेंसेशन है, देखो इतने सारे भक्त नाच रहे हैं कूद रहे हैं पसीना कितना निकलता होगा, इनकी सांस श्वासों में कितना कितनी भाप होगी, और सब भाप विग्रह तो ठंडे कलेजे वाला होता है, मेटल है ना आफ्टर ऑल, पित्तल है इसलिए ठंडी पर वो जम गई और उसकी नींव निकलने लगी। ओ अरे भैया सारा शरीर दो हाथ ऊंचे हैं, सारे के ऐसे हाथ भी हैं खुले हैं, वहां भाप नहीं दिखाई दी, आंख में ही भाप दिखाई दी उसका क्या सही ना, ये कंडेंसेशन कहां गया वहां। ये दुनिया विरोधाभासी, विरोधाभासी को विरोध वाली फिलोसफी चाहिए, जिनको जो पसंद है वो ले लेगा सही ना। तो ये घटना के लिए अपने जन निवास प्रभु ने अच्छी तरह से लिखा कि भाई ब्यूटी इज इन द आईज ऑफ बिहोल्डर, सुंदरता यदि देखना है तो आंखों द्वारा सुंदरता प्राप्त नहीं होती, आंख के पीछे जो देखने वाला है उसकी क्या भावना है। यदि उसकी पत्नी पतिव्रता है और लेकिन दिखाव में सुंदर नहीं फिर भी उसको बहुत प्यारी लगती है। तो सुंदरता का कि नजरिया कहाँ है, वो छुपी होती है अपने स्वानुभव में होती है। तो कहने का मतलब है कि ये जो बाहर की दुनिया में भटकते हैं सिर्फ भौतिक प्रकृति के 3 गुणों द्वारा मोहित हो जाते हैं, चाहे वो साइंटिस्ट हो या कोई भी हो बेवकूफ कर्मी भी क्यों ना, इन लोगों की दृष्टि अलग होती है। उस पर उसको काम चलाओ गलत सिद्धांत पर इनका कोई ठोस से फल प्राप्त नहीं होता। वो भौतिक बंधनों से भी छूटते नहीं, जो सूक्ष्म है वो तो समझते नहीं कि इसमें बंधन क्या है। यदि गधे गधे के साथ मित्रता करो तो लात पड़ेगी, खाने के लिए तैयार कर, सही ना। वो तो समझ रहे हैं कि केस समाज ऐसा है ही, कभी हंसाता है, कभी रुलाता है, कभी जिंदा करता है या मरता है, हम तो उसके अधीन है। लेकिन पाया क्या, फायदा क्या हुआ, इसकी वो चिंता नहीं कर रहे। ये बारम्बार लात खाने के लिए आता है, और कलयुग तो लात मारता ही है, वो तो पहले से जाहिर कर देते हैं, कर देता है कि देख कलयुग आते ही मैं ऐसा ऐसा करूंगा, सारी दुनिया को भ्रष्ट करूंगा। तो अनुभूति का लोगों के भौतिक अनुभव से परे ये आध्यात्मिकता का अनुभव होता है। तो जो आध्यात्मिक दृष्टि वाले नहीं है उनको अनुभूति नहीं हो सकती है इसे। तो ये सिद्धांत देखो कि हम अपनी जड़ इंद्रियों द्वारा, अतः कृष्णस्य नामादि न भवेत ग्राह्यम इंद्रिय, भगवान के नाम का जो जो वास्तविक परिचय है उसको हम जड़ इंद्रियों द्वारा ग्रहण नहीं कर सकते। लेकिन सेवनम मुखे ही जिह्वादो स्वयं स्फुरत्यमेव अद्य, यदि ये नाम की सेवा के द्वारा, नाम की सेवा, अरे नाम की सेवा होती है, हम तो नाम के पीछे बहुत सारी भावना रखते हैं, नाम हमारी सेवा करेगा, इसलिए हम सोलह माला का जप करते हैं कि हमारे जीवन में ये हो जाएगा वो हो जाएगा, बस हरि बोल करा करो। कोई अच्छी पत्नी आए इसलिए हरि नाम करने को तैयार होता है, नहीं तो नहीं। कोई कहने के परीक्षा पास हो जाए, नहीं, नहीं। तो ये जड़ इंद्रियों द्वारा एक कैसे ग्राह्य है, लेकिन यदि हमारी बुद्धि ठिकाने आती है कि सेवनम मुखे ही जीवा दो, मुख से शुरू करके श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम, ये नवधा भक्ति में उतरना है। वहां सब में नाम प्राधान्य है, और प्राधान्य नामों में प्रधान नाम, मुख्य नाम आवश्यक है जो सर्वसिद्धि दे सकता है। तो यहां जब अन्नकूट का उत्सव हो रहा है, माधवेंद्रपुरी विशुद्ध भक्त है, दूसरे भी तो थे लेकिन माधवेंद्रपुरी की नजर से ही हमें समझना है, और वो चैतन्य महाप्रभु की सराहना द्वारा हम ये चैतन्य चरितामृत का अभ्यास कर रहे हैं। तो ये जो अचिंत्य भेदाभेद तत्व यहां भी लागू होता है, नहीं तो सारा चैतन्य चरितामृत का मायावादियों ने भी भाषांतर किया है, लेकिन चैतन्य महाप्रभु को एक भक्त के रूप में ही वो स्वीकार करते हैं, और जिनकी भक्ति वैधानिक दृष्टि से भी साइंटिफिक नहीं है, वो मायावादी लोग उसे क्या समझ पाएंगे। आत्मानुभूति का विषय तो दूर ही रहा, इसलिए परंपरागत होना बहुत आवश्यक है। परंपरा में वो भी विशुद्ध परंपरा जो अस्खलित कहलाई जाती है, स्खलित परंपरा में भरोसा नहीं, तो कोई अपने आप परंपरा चालू नहीं करो, कृष्ण भगवान स्वयं करते हैं। तो इस श्लोक में बताया कि यद्यपि श्री गोपाल ने भोग लगाई, सारी सामग्री खाली थी, फिर भी उनके दिव्य हाथ से के स्पर्श से हर वस्तु पूर्ववत बनी रही। दिव्य हाथ, किसी ने देखा कि भगवान खा रहे थे, किसी ने देखा कि भगवान हाथ से छू रहे थे, उठा रहे थे लड्डू या कुछ भी हो, तो वो तो बताया नहीं गए, लेकिन सीधा कह दिया। सीधा कहने में गुनाह क्या है भाई, दिव्यता का परिचय करने के लिए हमें खाते हुए बताओ तो ही समझ सके। तो कोई ये आधुनिक टेक्निक से वो पता है कंप्यूटर ग्राफिक्स करना चाहता है। जैसे कई बार ऐसी वीडियो आई है जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती का एक पोज जो है उसे भी इधर उधर घुमाना उन्होंने कंप्यूटर द्वारा कर दिया। देखो ये पहली मूवी है और नाम कमाना चाहता है उस पर। लोग समझते हैं कि देखो ये कंप्यूटर द्वारा ये मैकेनिकली या इलेक्ट्रॉनिकली हाथों के हलन चलन को बताते हैं। और कभी मुख बंद है फिर भी खोल के करते हैं। तो सुप्रीम पोजिंग पिक्चर एक पर एक लगाकर दुनिया को गुमराह कर रहे हैं। तो उसमें भौतिकवादी लोग इस पर आकृष्ट हो जाएंगे। देखो हमने ढूंढ निकाली कहां से, कोई संदर्भ नहीं देता, ये तो अचानक आप ही कह देंगे। यानी कि उसके ख्याल में समझौता नहीं है, बल्कि वो अपनी बातें बेचना चाहता है। पसंद आई ले लो, खरीद लो, पैसे लाओ। जिसका लक्ष्य है पैसे कमाने का है, ऐसे महानुभावों को भी चलता पुरता पूर्जा बना देते हैं। गहराई से कोई बात समझने की कोशिश नहीं करता। उसी तरह ये जब खोद काम करके अन्वेषण करते हैं आर्कियोलॉजी में खास करके, तो कहते हैं कि ये भीमसेन का बेटा घटोत्कच बहुत बड़ा था, इतनी साइज बता रहे, देखो उसका कंकाल मिला, इतना बड़ा कंकाल वहां एक आदमी को उठा के कंप्यूटर द्वारा रख दिया कि देखो इतनी साइज, इतना बड़ा था, सचमुच मौजूद है। ये देखो ऐसी ऐसी तकनीकी करामतें द्वारा लोगों को गुमराह कर रहे हैं। बहुत बार ऐसी फोटो आती है, लेकिन भागवत में जब तिमिंगल मछली की बात आती है, नाम है तो ये प्रभुपाद जी कहते कि ये तिमिंगल मछली बड़ी बड़ी जो स्टीम बोट होती है नौकाएं इनको खा जाती, ऐसा प्रभुपाद जी ने लिखा है। देखो ये ठंडे गप्पे मारते हैं। सही, क्योंकि इनकी खोपड़ी में जाता है, लेकिन उसकी खोपड़ी में जो निकला दूसरों को बेचना चाहता है। तो भौतिकवादी तीन गुणों से ऊपर उठ ही नहीं पाते, जबकि आध्यात्म के गुण में जो जो विशुद्ध विशुद्धिकरण होता है, विशुद्धिकरण का नापदंड कुछ और ही है। भौतिक गुणों का अभाव में क्या आध्यात्मिक गुणों की वृद्धि हुई है? भौतिक गुणों का अभाव ऑटोमेटिकली आध्यात्मिक गुणों को नहीं देता, आध्यात्मिक गुणों का पालन करना होता है। एक विशुद्ध भक्त में 26 क्वालिटीज, 26 गुण है, आध्यात्मिक गुण विकसित होने चाहिए। यत्किंचित मात्रा में भी होना तो चाहिए, तब वो गुणों द्वारा भक्ति का प्रभाव बता सकता है। तो अपने अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ में सिर्फ ये सिस्टम नहीं, लेकिन उसका विकास भी देखा जाता है। तो तीन चार दृष्टिकोण से हमें ये घटना आध्यात्मिक रूप से समझाते हैं, एक रूप से नहीं, तीन चार दृष्टि से। और उसके लिए प्रभुपाद जी श्लोक रजू करते हैं। सर्वप्रथम श्लोक कि देखो भगवान स्वयं कहते हैं कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तद भक्तिम अपाहृतम अश्नामी प्रयतात्मना। अश्नामी, मैं खाता हूं। तो जो प्रेम पूर्वक इन चीजें दे सकता है तो अवश्य मुझे वो खाने में कोई परेशानी नहीं है, मैं खाता हूं। तो हम सारी चीजें न खाई हुई क्यों दिखाई देती है? तो एक तरीके से जो खाया है नहीं दिखता, न खाया है वही दिखता है क्या? इसलिए भगवान कह देते प्रयतात्मनः, प्रयतात्मनः यानी कि ये प्रेम पूर्वक का प्रयत्न मैं स्वीकार लेता हूं, खाता हूं, पदार्थ को छोड़ देता हूं, लेकिन ये पदार्थ छुए हैं, छूने के लिए इंद्रियां चाहिए, सिर्फ हाथों से ही छू सकते हैं क्या? तब समझा अंगानि यस्य सकलेन्द्रिय वृत्तिमन्ति पश्यन्ति पान्ति कलयन्ति चिरं जगन्ति आनंद चिन्मय सदच्चोल विग्रहस्य गोविंदमादि पुरुषं तमाम। भगवान की हर एक इंद्रियां एक दूसरे का काम करती है, हर एक इंद्रियां तो पश्यन्ति देखकर पान्ति, देखकर वो पा भी सकते हैं। क्यों? ऐसी बात कौन समझ सकता है? क्यों भैया? तुम्हारी इंद्रियां भी आध्यात्मिक गुण वाली बनी है, उसमें जो चेतना वहन कर रही है वो तो आध्यात्मिक है, लेकिन तू भौतिक गुणों के संपर्क में आकर ये त्रिगुणात्मक इंद्रिया द्वारा नापतोल कर रहा है, वो तो ठीक नहीं है। क्यों? आदमी अंधा हो जाता है तो स्पर्श इंद्रिया काम नहीं करती है देखने का, तब स्वीकारेगा हाँ तो होता है। तो क्या भगवान के शिव विग्रह को नहीं होगा क्या? वो क्या जड़ है, चेतन कहां? तुझे चेतन दिया गया है फिर भी तू जड़ता में पड़ रहा है, उसका क्या? हमें चेतन दिया गया है फिर भी जड़ इंद्रियों पर हम महत्व रखते हैं, इसलिए ये जड़ इंद्रियों को इंद्रियों के स्वामी ऋषिकेश की सेवा में लगाना, तब स्वयं स्फुरत्य में अद्य, इसे भक्ति के उस मार्ग का कोई दूसरा विकल्प नहीं है। चाहे पंडित हुआ लेकिन भगवान का दुश्मन हुआ और भगवान की आध्यात्मिक इंद्रियों को न समझकर अपनी जड़ इंद्रियों पर ही मदार रखता है, लेकिन बेवकूफ बनता है और तो दुनिया को कैसे गुमराह कर सकता है, ये मायावाद। तो हमें ये देखा, अभी देखो भगवान का ये श्री विग्रह है वो अपने आप में पूर्ण है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णाद पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। जो ज्ञानी मायावादी लोग वो क्या है, हाँ ये तो बड़ी व्याख्या है लेकिन वो इतनी गोल गोल घुमाती है, हाँ हमारे दिमाग में जाती ही नहीं, बोलेंगे लेकिन समझाने का प्रयत्न नहीं करेंगे। ओम पूर्णमदः, अदह यानी कि जो कुछ है अपने आप में पूर्ण है, पूर्णमिदम इनसे जो प्राप्त हुआ है वो भी पूर्ण है, पूर्णात पूर्ण पूज्यते, इसका मतलब है एक पूर्ण में से दूसरे पूर्ण एकम ही पैदा होते हैं। पूर्ण से पूर्ण मादाय, पूर्ण में से पूर्ण के अलावा और कुछ नहीं निकलता है और फिर भी पूर्ण का पूर्ण रहता है। अभी खोपड़ी काम नहीं करती है, ना समझ रहे थे। क्यों नहीं भैया, जो बाहर की दृष्टि और अंतर की दृष्टि में एक ही बात है। भक्त ये देखेगा कि पूर्ण के अंदर ही पूर्ण होते हैं, पूर्ण के साथ जुड़ावा करने वाले ही सभी पूर्ण होते हैं। जो जुड़ावा नहीं करता गया काम से, जो मान लेता है कि जुड़ावा है फिर भी अनुभव नहीं करेगा, क्योंकि मन तो त्रिगुणात्मक भाव से छूटा नहीं, इसलिए घुमाता फिरता रहता है। भगवान ने मिट्टी खाई, यशोदा माता ने कहा देखूं कहां तेरी मिट्टी खाई, तो वो पागल हो गए। पागलपन में ये सोचने लगी कि मेरा बेटा कोई जादूगर है, महान जादूगर है, या भगवान तो नहीं है। भगवान के क्या, जो मुझे भगवान समझ है उसके लिए मैं भगवान नहीं रहूंगा, उसके लिए तो मैं उसके साथ ही अंतरंग व्यवहार करना पड़ेगा। इसलिए वो भगवत्ता छोड़ देते हैं, ना समझ लोग पर ही भगवत्ता का दावा करते हैं। देखो भगवान भक्तों के साथ अंतरंग रूप से व्यवहार करते हैं, क्योंकि उनकी परानिष्ठा परात निष्ठा सबसे ऊंची प्रकार की निष्ठा है, जो विशुद्धि के बाद आती है। और भक्त अपने पूर्णतया भगवान को शरणागत होने के कारण भगवान का पूर्ण परिचय में भगवान के स्वभाव का परिचय करता है, और भगवान का स्वभाव में भगवान की सारी शक्तियां अपने आप काम करती है। भगवान को इनके व्यक्तित्व और इनकी शक्तियां, इनका तादात्म्य इतना है कि शक्तियां जान लेती हैं कि भगवान की क्या इच्छा है। तो स्वाभाविक ही ज्ञान बल क्रिया च इत्यादि में भगवान के कार्यकलाप में सब दिखाई देगा कि भगवान के स्वभाव के अनुसार ज्ञान बल क्रिया के रूप में वो शक्तियां उपस्थित हो जाती हैं और काम कर लेती है, और भगवान को ना कुछ करने देती है, भगवान की शक्तियां ही काम करती है। तो मायावादी क्या है, ए देखो विष्णु भगवान भी जब अवतार लेकर आते हैं तो इनको भी कर्म काल भोग बनना पड़ता है। देखो ना ये तुलसी कितनी पवित्र थी, विष्णु भगवान को भी शाप देती है कि पत्थर बन जा तू। तुलसी विवाह, तो तुलसी विवाह में ये सब कर्मकांडी लोग ऐसा मनाते हैं कि विवाह करो, तुलसी का विवाह मनाओ, लेकिन अध्यात्म की दृष्टि से भगवान से भक्त कभी बिछोड़ता नहीं, उसका क्या है। हम लोग क्यों नहीं मनाते हैं, अपनी परंपरा में तुलसी विवाह मनाने को कहा है क्या, फिर भी मनाते हैं। बहुत सारे इस्कॉन सेंटर में हमने देखा है, भक्त की महिमा या भगवान की महिमा, भक्त के चरित्र में भगवान की महिमा का सर्वोपरि होता है। भक्त अपना चरित्र ऊंचा बताकर भगवान को ऐसे पराजित नहीं कर सकता। विष्णु भगवान को पत्थर बन जाओ ऐसा वृंदा ने श्राप दिया, तो उसमें वृंदा की जीत हुई क्या, ये हार जीत की बात है नहीं, भक्ति काम है। वृंदा आज तक अपने पति की भक्ति करती थी, उसके लिए वो विष्णु भगवान की भक्ति करती थी, वो पति भक्त थी। भगवान की भक्ति करते हुए जो परिणाम आता है वो सारा परिणाम ये राक्षस को बचाने के लिए करती थी, क्योंकि लगाव था उसको। इसलिए किसी देवता द्वारा भी वो पराजित नहीं हुआ, खुद शिव जी का अंश है फिर भी शिव जी नहीं परास्त कर सकते, तो ये तो उल्टा विचार आ गया। तो कहने का मतलब है कि हम काफी विरोधाभास देखते हैं इन चीजों, इसलिए वो अपनी परंपरा में नहीं आता। विशुद्ध भक्ति माधवेंद्रपुरी ने सिखाई है, और वो अचिंत्य भेद अभेद तत्व, भेद दिखाई देता है अभेद से सारा निराकरण होता है। शक्ति और शक्तिमान में अंतर नहीं, नाम और भगवान स्वयं में अंतर नहीं, भगवान की हर एक चीजों और भगवान में अंतर नहीं, भगवान के प्रसाद और भगवान में अंतर नहीं। लेकिन प्रसाद खाते हम भगवान को भूल जाते हैं, दबा के खा लेते हैं, प्रसाद के नाम पर हम भी मजाक कर लेते हैं, लेकिन भगवान को संतोष हुआ कि नहीं हमारे खाने से। भगवान तो कहकर देखा ना, एक तो उसको डायबिटीज हुआ है और फिर से हमें हजम करने के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ेगी, ये मेरी सेवा है या मेरे से सेवा ली रखता है ना। तो कहने का मतलब है कि हमें अंतर्मुखी बनकर भगवान को अंतरात्मा में से छिपाना होता है। इनका हम इनके प्रभाव का कोई दुरुपयोग नहीं कर सकते। और ये विशुद्धि लाकर ही भगवत प्राप्ति हो सकती है। पूर्ण के अंदर सब कुछ पैदा होता है, पूर्ण के बाहर कुछ पैदा नहीं। लेकिन हमारी दृष्टि ऐसी हुई कि हम सब कुछ बाहर ही पैदा हुआ देखते हैं। ये सृष्टि बढ़ती ही जा रही, कह रहे सारा विश्व बढ़ता जा रहा है, तो बढ़ेगा ही, क्योंकि तेरी खोपड़ी में इतनी जगह ही कहां है। ये बढ़ता जाएगा तो नाप तोल नहीं कर पाएगा, इसलिए ऐसे साइंटिस्टों पर प्रभुपाद जी कहकर भरोसा मत रखना। अपनी पद्धति चैतन्य महाप्रभु की कृपा से अचिंत्य भेदाभेद स्वरूप का विशिष्ट उपयोग करती है। इसलिए गौड़ीय वैष्णव परंपरा सर्वश्रेष्ठ बनी रही है, और उसी के लिए ही उसका जो परिचय, उसका विस्तार इत्यादि कराने के लिए श्रील प्रभुपाद जी ने जिम्मेदारी उठाई है। तो अवश्य हम भी उनके चरणों में चलकर उनकी प्रतिभा बढ़ाते रहे। हरे कृष्ण। किसी को कोई प्रश्न हो तो जल्दी करो, हम भागे जा रहे हैं। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन। हरि बोल श्री प्रभुपाद। लेकिन विशुद्धि की भी मात्रा और निष्काम की बात करो।